अस्सलाम वालेकुम। नावल है दियारे दिल और एपिसोड नंबर 8। रेशम खाने की ट्रे वापस लेने आई तो इसने इससे कहा कि वो इसके साथ इसका सामान यहाँ रखवा ले। डैडी का जो कमरा इसे यहाँ इस्तेमाल के लिए मिला था वहाँ से इसके दो बैग्स और एक सूटकेस पर मुश्तमिल सामान जो अभी तक जूं का तू बैग्स और सूटकेस ही में था वो इसने रेशम के साथ मिलकर अपने इस बेडरूम के वार्डरोब में बिल्कुल सही से सेट कर लिया। रात में वो शायद यहाँ अकेले ना सो सके कि ये हिस्सा बाकी घर से जरा हटकर है, मगर अब इसे दिन में वो इस जगह को इस्तेमाल करेगी और इसका सारा सामान भी रहेगा। नहा कर लिबास तब्दील करने के बाद वो वहां से निकलकर आगा जान के कमरे और वहां से लाउंज में आ गई। ब्लू जीन्स और व्हाइट कॉटन की शर्ट पहने वली वहां बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसकी जैकेट भी सोफे पर ही पास पड़ी हुई थी। वो लिबास तब्दील कर चुका था और इसके बैठने के अंदाज से लग रहा था कि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पता नहीं वो किससे बात कर रहा था और इससे यहाँ बैठना चाहिए था या नहीं, यही सोचे वो लाउंज से निकलकर बाहर गार्डन में आ गई। चलो, वो 10 मिनट बाद बाहर आया और इससे आने का कहते सीधा पोर्च की तरफ चला गया। तमाम रास्ता इसने इस इंतजार में गुजारा कि वो मईज की आमद पर कुछ कहेगा, कोई तंबीह, कोई गुस्सा, कोई हुक्म, कोई सरजनिश, मगर वहां तो बस एक गहरी खामोशी और संजीदगी के सिवा कुछ भी ना था। आबाद की मम्मी आयशा आंटी आगा जान की आयादत के लिए आई थी और इनके बाद भी आगा जान के कई रिश्तेदार, दोस्त, मेल मुलाकाती इनकी आयादत के लिए आते रहे थे। मगरिब के वक्त इसे आगा जान के पास फुर्सत से ऐसे बैठने का मौका मिल सका जब इन दोनों के अलावा वहां और कोई नहीं था। वली और आबाद नमाज के लिए गए हुए थे और जरमीना आगा जान के अभी कुछ देर कबल हुए ECG और खून के कुछ टेस्टों की रिपोर्ट्स यहीं के किसी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करने गई हुई थी। विजिटिंग आवर्स खत्म हुए थे तो मिलने जुलने और आने जाने वालों का रश खत्म हुआ था। जूस पियेंगे आगा जान, इसने इनसे पूछा। इन्हें बहुत हल्की गजा दी जा रही थी, वो भी पेट भर कर नहीं। पेट भर खाने या पीने से दिल का काम बढ़ जाता था और फिर इनकी तबीयत में बेचैनी और खराबी पैदा होने लगती थी, इसीलिए इन्हें दिन में वक्फे वक्फे से कई बार थोड़ी थोड़ी सी हल्की खुराक दी जा रही थी। उन्होंने सर इस्बात में हिलाया तो वो ग्लास में जूस निकाल कर इनके पास आ गई। इनका सराहना ऊंचा करके वो इन्हें आस्ता आस्ता जूस पिला रही थी। इनमें फिलहाल उठ कर बैठने या ग्लास अपने हाथ में पकड़ लेने की कुव्वत बिल्कुल नहीं थी। इसके हाथ से जूस लेते वो इसे मुसलसल देख भी रहे थे। कल के मुकाबले में आज इनकी तबीयत बेहतर कही जा सकती थी। वो कल पूरा दिन, कल पूरी रात किन कैफियत से गुजरी है वो इन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, मगर एक बात थी जो इनसे कहना चाहती थी, जो कहने के लिए वो कल से बेकरार थी। कल आपने इतना कुछ कहा और मेरा जवाब सुनने से पहले तबीयत खराब कर ली। चंद घूंट जूस पीने के बाद उन्होंने गर्दन से बस का इशारा किया तो वो गिलास साइड में रखकर नैपकिन से इनके लबों और दाढ़ी पर गिरे जूस के चंद कतरे साफ करते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आगा जान। बस ये होता है ना कि कोई मोहब्बत हमें बहुत वाफर मिल रही होती है तो हम ये सोच कर कि ये तो हमें हमेशा से मिल रही है और हमेशा ही मिलती रहेगी, इनसे कुछ बेनियाज से हो जाते हैं, इसे अपना हक जो समझ रहे होते हैं, इसे फॉर ग्रांटेड जो ले रहे होते हैं। लेकिन कल जब आपकी तबीयत खराब हुई, आपको खो देने का खौफ मेरे अंदर पैदा हुआ, ये एहसास जागा कि ये मोहब्बत मुझसे छिन भी सकती है, तो मुझे पता चला मैं आपसे कितनी शदीद मोहब्बत करती हूँ। मैं आपको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती आगा जान। आपको मेरे लिए ठीक होना है, आपको मेरे लिए जिंदा रहना है आगा जान। क्या ये सिर्फ वली और जरमीना का हक है कि वो आपके साथ रहें? मैं आपके साथ आपके पास रहना चाहती हूँ आगा जान। मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। आपने मेरे और मम्मी के लिए जो पोर्शन बनवाया है ना आगा जान, मैं अब उसमें ही रहूंगी और मम्मी को भी एक ना एक दिन जरूर वहां ले आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है आगा जान। इसकी आंखों से आंसुओं के चंद कतरे टपक कर इनके रुखसार पर गिरे थे। वो दिल के मरीज हैं और इसे इन्हें टेंशन नहीं देनी चाहिए, इसे इनके सामने रोना नहीं चाहिए, वो ये जानती थी। मगर वो ये भी जानती थी कि कोई दवा कोई इलाज इन्हें इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकता जितना इसका मोहब्बत का ये इजहार। वो बिस्तर पर सख्त बीमार पड़े इस इंसान से जो इसका दादा है, वालहाना प्यार करती है, बेतहाशा मोहब्बत करती है, और ये बिल्कुल सच था। ये फारा बहरोज खान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच था कि वो मोहम्मद बख्तियार खान से अपने दिल की तमाम तर शिद्दतों के साथ मोहब्बत करती थी, पता नहीं कब से। जरमीना इसमें थोड़ा सा सूप और डालकर दे दो। वो आगा जान को सूप पिला रही थी, इसने प्याले में थोड़ा सा सूप डाला था कि अगर इन्हें अच्छा लगा और मजीद पीने की रगबत पैदा हुई तो और डाल लाएगी। जरमीना बाथरूम से वजू करके निकली थी, कोनियों से ऊपर चढ़ी आसिने नीचे करते, इसने हैरत और चंबे से इसे देखा। इसका हैरत से देखना अपनी जगह दुरुस्त था, वो इसे इतने मामूल के नॉर्मल से अंदाज में मुखातब हुई थी जैसे रोजमर्रा की ये बातचीत उनके दरमियान रहा करती थी। मगर फिर फौरन ही अपने चेहरे से हैरत भरे तासरा हटाती हुई नॉर्मल से अंदाज में चलती आगा जान के बेड के पास आई और फारा के हाथ से सूप का प्याला ले लिया। आगा जान के पास इस वक्त वो दोनों थी और ये इन दोनों के दरमियान पहली बाजाब्ता बात थी जो फारा ने की थी, वगरना इससे कबल सुबह से वो दोनों सारा वक्त आगा जान के साथ होने के बावजूद आपस में एक लफ्ज ना बोली थी। वो कल रात भी परसों ही की तरह आगा जान के पास अस्पताल में रुकना चाहती थी, मगर उन्होंने इसे और जरमीना दोनों को घर जाने का हुक्म देते सिर्फ वली को अपने पास रुकने दिया था। सुबह 10 बजे वो आई थी तो आगा जान ने वली को घर भेज दिया था। दोपहर 12 बजे आगा जान के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद निसार अली खान इनका मुआयना करने आए तो इनकी तबीयत में बेहतरी पाकर इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। जरमीना वली को मोबाइल पर फौरन ये सुनाकर जल्दी जल्दी प्राइवेट रूम में शिफ्ट होने के लिए आगा जान का सारा सामान समेटने लगी थी। इस समेटा समाटी में पूरी दिलजमी से फारा ने जरमीना की मदद करवाई थी, बगैर आपस में कोई बात की है, और फिर आगा जान को अस्पताल के अमले की मदद से वो प्राइवेट रूम में ले आई थी। वली दोपहर 2 बजे इन दोनों का खाना सा लेकर आया था। आगा जान के बेड के पास सामने वही खड़ी थी, इसलिए इसने वो बड़ा सा प्लास्टिक बैग इसके हाथ में पकड़ा दिया। खाना है तुम दोनों का, इससे वो साजो सामान पकड़ाकर फौरन ही आगा जान की तरफ झुका। इनके बेड के किनारे पर टिक कर न जाने वो सरगोशियों में इनसे क्या राजो न्याज करने लगा था। जरमीना भी नमाज पढ़कर फारिग नहीं हुई थी, इसने आगा जान की सेहत याबी के लिए न जाने कौन कौन से वजायफ शुरू कर रखे थे, इसलिए इसकी हर नमाज बेहद तवील होती थी। किस ट्रे के अदम दस्तयाबी के सबब इसने सोफे पर एक अखबार बिछाया और सारे डब्बे और हॉट पॉट वगैरह खोल खोल कर इस पर रख लिए। प्लेटें, चमचे, गिलास और पानी की बोतल भी साथ सजा ली। आ जाओ जरमीना, खाना ठंडा हो रहा है। इस लड़की ने परसों शफाक लहजे में इसे क्या कहा था, अपनी बहुत जल्दी गुस्से में आने और भड़क जाने वाली आदत के बरखिलाफ वो सब बुलाए बहुत नॉर्मल और दोस्ताना से अंदाज में इसे बोली थी। जाए नमाज तय करती जरमीना ने एक पल को ताज्जुब से इसे देखा, फिर सर असबाद में हिलाती सोफे पर आ गई। वो दोनों साथ बैठकर खाना खा रही थी और वली की बातें सुनते आगा जान बड़ी महवियत से इन दोनों को देख रहे थे। वो अंदाजा लगा सकती थी कि इन्हें यह मंजर बहुत अच्छा लग रहा है। इनके तीनों पोता पोती इनके पास हैं और आपस में बहुत खुशगवार दोस्ताना माहौल भी इस्तवार कर चुके हैं। आगा जान की ये कैफियत जब वो समझ सकती थी, जो हमेशा इनसे बहुत दूर रही थी, तो वली और जरमीना जो पल कर बड़े ही इनके पास हुए थे, क्यों ना समझ पाते, गालबन यही वजह थी जो जरमीना चंद लुक में लेने के बजाय इत्मीनान से खाना खाने लगी थी। ये फ्राइड राइस बाकी के तुम ले लो, मैं सिर्फ ये चिकन जलफ्रेजी और लूंगी। वो दोनों जैसे बचपन की बिछड़ी सखियां थी जिन्हें एक दूसरे की पसंद नापसंद सब अब्जर्द थी। कम अज कम इसके बोलने का अंदाज तो ऐसा ही था, जबकि सच तो ये था कि अभी अभी साथ बैठकर खाना खाते से ये पता चला था कि जरमीना चावलों को रोटी या किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले में ज्यादा पसंद करती है। वो बाकी सब डिशेस को छोड़कर सिर्फ चावलों पर थोड़ी सी जलफ्रेजी और सलाद डालकर खाने में मगन थी। वली ने गर्दन घुमाकर बस एक ही बार इन दोनों को खाना खाते देखा था, इसके बाद वो फिर आगा जान के साथ काना फूसी में मसरूफ हो गया था। पेट भरकर खाना खा लेने के बाद खाने के कुछ वक्त इन दोनों का ऊँगते गुजरा था। असर के वक्त इबाद की आमद हुई थी और फिर इसके कुछ देर बाद विजिटिंग आवर्स शुरू हो जाने के सबब रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की आमद रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रिश्तेदार को बीमारी की पूरी तफसील जाना थी और वो भी आगा जान की जबानी। मशरकी रख रखाव, वजादारी और आपस में एक दूसरे के दुख सुख में काम आने वाली हमारी तमाम रवायात जितनी भी अच्छी हों, कम अज कम अयादत और ताजियत का हमारा तरीका कार इंतहाई नामुनासिब तकलीफ दे बल्कि गैर अखलाकी होता है। ये मुबालगा आगा जान की 7वीं या 8वीं रिश्तेदार खतून थी जिन्हें वो परसों सुबह अपने नहाने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक की सारी रोदाद मुफस्सल सुना रहे थे। यह खातून बाकी तमाम रिश्तेदारों से भी बढ़कर साबित हो रही थी। बाकी सब ने तो सिर्फ परसों आगा जान की तबीयत खराब होने का तमाम अखबार सुनकर जान बख्शी कर दी थी। यहां तो और बहुत तवील गुफ्तगू और अवामी मशवरों का भी सामना था। आप सुबह सुबह नहाए ही तो गलत। फिर दवाओं से मुतल्लिक सुने सुनाए मशवरे मशहूर मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के नाम ऐसे रवानी से लिए जा रहे थे गोया वो बचपन में इनके साथ खेलती आई हूँ। डॉक्टर निसार की प्रोफेशनल महारत पर शक, कार्डियोलॉजिस्ट बदलने का मशवरा, जो दवाएं दी जा रही थी इन पर एतराज। खून पतला करने वाली ये दवा तो बिल्कुल गलत दी जा रही है, और ब्लड प्रेशर के लिए ये दवा, इसके साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक हैं। वो अपने 6 या 7 दोस्तों और रिश्तेदारों की बीमारियों और अमवात के किस्से मुफस्सिल सुनाती, यकीनन आगा जान को कोई खुशी तो हरगिज नहीं पहुंचा रही थी। इन सब में से कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा, वो बड़ी तरह झुंझलाई। बली बेहद नापसंदीदगी नागवारी से इन्हें देख जरूर रहा था, मगर गालबन ब्राह रास कुछ कहते या टोकते में रवादारी आड़े आ रही थी। अबा तो था ही बामुरबत इंसान, लेकिन इसे जरमीना जैसी मुंह फट और साफ गो लड़की से इस बुजदली की हरगिज तवक्का ना थी। जरमीना चेहरे पर जंजलाहट और नाराजी लिए इन खातून को देख ही रही थी, मगर थी बिल्कुल खामोश। अच्छा, बाएं हाथ में रात से दर्द था। ओ हो, यही गलती की ना आपने, अगर आप रात ही इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो एकदम ही सोफे पर से उठकर आगा जान के बेड के पास आ गई। आगा जान, अब आपकी दुआ और सोने का टाइम हो रहा है, बाकी बातें फिर कभी कर लीजिएगा, वो बजाहिर नर्म शीरी लहजे में बोली। अरे हाँ, देखो मुझे ख्याल ही नहीं रहा, बैठे बैठे इतनी देर हो गई। वह खातून एक नागवार निगाह इस पर डालकर फौरन खड़ी हो गई और फिर आगा जान को खुदा हाफिज कहती 2-3 मिनट के अंदर ही चली गई। आगा जान ने मुतफक्कर निगाहों से अपनी इन रिश्तेदार खातून और फिर बदतमीज मुंह फट पोती को देखा। वो आगा जान की निगाहों का नोटिस लिए बगैर सुकून से वापस सोफे पर आकर बैठ गई। वली ने अपने चेहरे को हर तरह के तासरात आरी कर रखा था। वो खुश हुआ या ना खुश वो जान ही सकती थी। जरमीना हैरत से गुंग इसे देख रही थी, शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी सी सिफात किसी और में भी पाई जा सकती थी, जबकि अबा चेहरे पर महफूज सी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। मैं समझता था ये खूबियां सिर्फ मेरी बेगम में पाई जाती हैं। आगा जान कहते हैं ये हमारी खानदानी और मुरूसी खूबियां हैं, इनमें ना हमारा कमाल है ना कसूर। अबाद की शोही का इसने बेसाख्ता और बर्जस्ता जवाब दिया था। इस जवाब पर अबाद के साथ आगा जान भी बेख्तियार खिलकर हंस पड़े थे, जबकि जरमीना ने इसे घूर कर देखा था। वो अपने मियाँ भाई और दादा सबसे अपने लिए मुंह फट और बदलिहाज और बदतमीज के अलकाब सुना करती थी, मगर इन सिफात पर इसने यूं गर्दन अकड़ा कर फख्र का इजहार कभी ना किया था जैसे फारा कर रही थी। आगा जान को 7वें दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। कल दोपहर वो हॉस्पिटल से घर आए थे और फिर इनकी अयादत के लिए आने वालों का जो ताना बंदा था, तो इन सब में से किसी को भी रात गए तक एक लम्हा भी फुर्सत का नहीं मिला था। सुबह वो अपने मामूल के वक्त पर बेदार हो गई थी। आगा जान को जागे देखा तो वो इनके लिए नाश्ता बनाने किचन में आ गई। वो दलिया चुनकर चूल्हे पर झाड़ कर फारी ही हुई थी कि जमीना किचन में आई। आओ जरमीना, चाय पियोगी? इसके हाथ में चाय का कप था और वो खुश अखलाकी से इसे भी चाय ऑफर कर रही थी। नहीं, मेरा काफी का मूड है, नाश्ते में साथ काफी लूंगी, वो फारा का जवाब देती इसके पास ही आ गई। दलिया चढ़ाया है मैंने आगा जान के लिए, जब तक वली इनका मुंह हाथ दिलवाकर लिबास तब्दील करवाएगा ये तैयार हो जाएगा, जमीना को कुकिंग रेंज की तरफ देखता पाकर इसने बताया। सारा सबाद में हिलाते वो खामोशी से इसे देखने लगी। इसकी मुसलसल खुद पर मरकूज निगाहों से हैरान होते इसने इस्तफामिया अंदाज में इसे देखा। फारा, मैंने इस रोज तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया था, मैं तुमसे उस दिन की तमाम बातों के लिए माजरत करना चाहती हूँ। माजरत? लेकिन मुझे तो तुम्हारी कोई बात बुरी ही नहीं लगी। हम गुस्सा उसी को दिखाते हैं जिस पर अपना हक समझते हैं, वो इसके हाथ थाम कर रसानियत से बोली। वो गुस्सा नहीं, बदतमीजी और बहुत दिल दुखाने वाली बातें थीं। फारा, यकीन करो मुझे अपनी बातों पर तभी बहुत अफसोस हुआ था। इबाद से भी मुझे इस रात घर आकर बहुत डांट पड़ी थी। वो कह रहे थे तुमने उसकी हालत देखी नहीं थी, वो कितनी परेशान थी, और फिर तुमने इससे वो सब बकवास की थी। यकीन करो, बकौल तुम्हारे हमारी खानदानी और मुरूसी आदतों के बावजूद मैं हकीकत में इतनी बदतमीज नहीं। दरअसल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, और जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा हो मैं इससे मीठी बनकर मुनाफ़त नहीं दिखा सकती। जमीना की हद दर्जा संजीदगी के बावजूद इसे बेसाख्ता हंसी आ गई थी। अपनी खानदानी मुरूसी बदतमीजी पर फख्र में वो भी इस तरह मुबतला थी, इसे हंसता देकर वो भी हंस पड़ी। मैं पहले तुम्हें बहुत गलत नहीं समझती थी, बहरोज पापा के इंतकाल के बाद तुम्हारे रवैयों के लिए मैं तुम्हें कहीं ना कहीं रायत भी दे दिया करती थी। मुझे लगता था इतने बरसों की गलतफहमी है तुम्हें और रूही ताई को, कुछ अरसा तो लगेगा आगा जान के खलूस को समझने में, मगर जब तुम्हारा MBBS फाइनल ईयर का रिजल्ट आया और तुमने अपने रिजल्ट की इतला आगा जान को नहीं दी, तब मुझे तुम पर पहली बार बहुत शदीद गुस्सा आया था। वो तुम्हारे रिजल्ट आने से पहले इतने पुरजोश थे, मेरी फारी का रिजल्ट आने वाला है, मेरी पोती डॉक्टर बनने वाली है, वो अपने हर मिलने वाले से जिक्र किया करते, तो वो शरारत से मुझे छेड़ते थे कि तुम पीछे रह गई, फारा तुमसे पहले डॉक्टर बन गई। लेकिन जब तुमने इन्हें अपने रिजल्ट से आगाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही तुमसे फोन करके तुम्हारे रिजल्ट के मुतालिक पूछा और ये पता चला कि रिजल्ट आए भी 25 दिन हो चुके हैं, तब इनके चेहरे पर बिखरी तारंज और उदासी देखकर तुम मुझे बहुत बुरी लगी थी। वो तुम्हारे इस रवैये से हार्ट हुए थे। मैं आगा जान से इस रोज़ बहुत लड़ी भी थी कि एक बेहिस लड़की पर क्यों अपनी मोहब्बतें बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, जरमीना, फारा मुझसे मोहब्बत करती है, मैंने इसकी आंखों में अपनी मोहब्बत देखी है, बस सिर्फ जुबान से इसका इकरार नहीं करती, बहरोज की बेटी है ना, इसकी तरह थोड़ी सी जिद्दी। मुझसे बहुत पुरयकीन लहजे में ये सब कुछ कहकर जब वो तुम्हारे पास होने की खुशी में बहुत शौक से तुम्हारी तोहफ़ लेकर तुम्हारे पास लाहौर गए, तो वो वहाँ उस रोज़ जो कुछ हुआ और घर वापस आने के बाद जो दर्द गम में डूबा वजूद मैंने आगा जान का देखा, तो इसके बाद मुझे तुम पर पहले से भी ज़्यादा शदीद गुस्सा आया और तुम बहुत बुरी लगी। फिर अभी 2-2.5 महीने पहले जब उन्होंने CCU से तुम्हें फ़ोन किया था, मैं और लाला इस वक्त इनके पास, इनकी तबीयत अब तो बहुत बेहतर है फारा, यकीन करो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ना करे वो अब बचेंगे ही नहीं। और फिर मेरे और लाला की मौजूदगी में वहाँ से जो कुछ आगा जान को सुनने को मिला और इसके बाद जितनी इनकी तबीयत ख़राब हुई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी। उस रोज़ मैं तुम्हें कोई रायत नहीं दे सकी थी फारा, तुमने पहले जो कुछ भी सुना था, पर 6 साल से आगा जान को देख भी तो रही थी, मुझे लगा ये कैसी लड़की है, इसे तो मोहब्बत भी अपनी तरफ खींच नहीं पाती, आगा जान इसे सिवाय मोहब्बत के कुछ भी तो नहीं मांगते। इसके चेहरे के यकदम ही फीके पड़ जाने वाले रंगों को देखकर जरमीना ने गर्म जोशी से इसके हाथ दबाए, तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो, अगर तुम दिल की अच्छी ना होती तो इतना सारा झगड़ा कर देने और मामलात कोर्ट तक ले जाए जाने के बाद सिर्फ लाला के ये कह देने पर कि आगा जान बीमार हैं, कभी इनके साथ पेशावर आती, और अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा, कोई नफरत और बुगस नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत और बहुत कदर है, तुम वाकई इनसे बहुत मोहब्बत करती हो, तभी तो इनकी बीमारी का सुनते ही यहाँ आ गई हो, और तुम दिल की बहुत बहुत अच्छी हो फारा। जमीना की सच्चे दिल से की गई तारीफ, इसने मजीद कुछ रंग इसके चेहरे पर से गायब कर दिए थे, अगर इसे पता चल जाए कि वो यहाँ कैसे आई थी, फिर वो इसे कैसे समझेगी, फिर वो इसके मुतल्लिक क्या कहेगी, क्या सोचेगी।
अगर वली इसे सच बता दे, नहीं, वो यकदम ही पूरी काम गई, इसकी वो सच्चाई किसी को भी पता ना चले, काश वली भी इस दिन को भूल जाए। वली किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था, वो जरमीना से आगा जान का नाश्ता लाने को कह रहा था, शायद इसने जरमीना की बातें सुन ली थी। इसने वली के चेहरे पर तंज, इस्तहजा और तमस्खर तलाश करना चाहा, मगर वहां सिर्फ एक दबेज संजीदगी चेहरे का अहाता किए हुए थी। अगर वक्त पीछे की तरह ले जाया जा सकता है तो इस पल फारा बहरोज खान ने शिद्दत से ये दुआ मांगी थी कि 1 जनवरी की वो दोपहर लौट आए, वो इस मेज पर वली के सामने बैठी हो, वो अपनी शर्त फारा के सामने रखे, वो इस शर्त को कबूल करने के बजाय बजिद होकर इस शर्त के पेश किए जाने के असबाब पूछे, इसके पहम इसरार पर जब इसे ये बताने पर मजबूर हो जाए कि आगा जान की बीमारी के सबब वो किसी भी कीमत पर इसे अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए यहाँ आया है, तब वो इसे कहे आगा जान के पास चल रही है बगैर किसी शर्त और माहदे के। वली जरमीना से नाश्ते का कहकर फौरन ही वहां से चला गया था और जरमीना जल्दी जल्दी आगा जान के नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। इस इजलत तेज रफ्तारी के आलम में इसका ध्यान फारा की खामोशी की तरफ बिल्कुल ना गया था। वो जरमीना, मैं अभी आती हूँ, कहकर वहां से निकलकर अपने पोर्शन में आ गई। सीधी अपने कमरे में आकर अलमारी में रखे बैग की जिप खोलकर इसने इसमें सब सामान के बिल्कुल नीचे दबा लफाफा निकाला और वो कागज आखिर बाहर निकाल लिया। इस पर नजर डाले बगैर इसने इसे पुर्जे पुर्जे किया और फिर वो सब पुर्जे हाथों में समेटे किचन में ले आई। चूल्हा जलाकर इसने वो सब छोटे छोटे पुर्जे आग पर रख दिए थे। आगा जान को अस्पताल से आए 8 दिन हो गए थे। इनकी तबीयत में बेहतरी पाकर वली ने 2 दिन से दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। जरमीना अभी यहीं थी, ये बात भी हर एक दिन छोड़कर आगा जान की इयादत के लिए आ रहा था। इस रात भी वो आया हुआ था बहुत खुशगवार से माहौल में। आगा जानी के कमरे में रात का खाना खाया जा रहा था। वो अपने बेड पर बैठकर खाना खा रहे थे जबकि ये सब सोफों पर बैठे थे। क्या हुआ, तुम जल्दी खा भी चुकी? इसे प्लेट खाली करके मेज पर रखता देखा जरमीना बेसाख्ता बोली, लगता है फारा को हमारे पेशावरी खाने पसंद नहीं आ रहे। भाई जरमीना, खाने में थोड़ा सा लाहौरी जायका भी शामिल कर लो। इबाद मुस्कुरा कर बोला, ना पेशावरी ना लाहौरी, इन खातून को सिरे से देख सी खानों ही से रगबत नहीं है, ये तो चाइनीज पसंद करती हैं। वो जवाबन खामोशी से मुस्कुराती रही थी मगर इसकी तरफ से ये फौरन जवाब जरमीना ने दिया था। बाद चुटकले और लतीफे सुना सुनाकर सबको हंसाता माहौल को बहुत खुशगवार बनाए हुए थे। इसे बात का ये बेतकल्लुफाना दोस्ताना अंदाज अच्छा लगा था। इसे सबके साथ बैठकर खाना खाना भी बहुत अच्छा लगता था। अपने घर वो पिछले कई बरसों से अकेले खाना खाने की आदत आदी हो चुकी थी, या वही नहीं रहा था कि फैमिली के साथ लोग अगर साथ मिलकर खाना खाते हैं तो आम सा खाना भी कितने मजे का लगने लगता है। वली भी इसकी तरह खाना खा चुका था और अब वो हजैफा के साथ मसरूफ था जो मामू का सर खाता इससे बे ब्लेड चलाना सीखना चाह रहा था। बरखुदार, ये वकील साहब को आपने किस काम पर लगा दिया है? अबाद ने बेटे से कहा, यार वली, हमारे बचपन में ये लट्टू कितने रुपए के मिला करते थे कुछ याद है? कार्टून नेटवर्क के करिश्मे हैं सब। अब लट्टू जैसी आम सी चीजें भी बच्चे कई कई सौ की खरीद कर लाते हैं। हजैफा के साथ मसरूफ वली ने अबाद को जवाब दिया। अगले रोज जब अली दफ्तर जा चुका था और आगा जान की आंख लगी हुई थी तब वो दोनों लाउंज में फ्लोर कुशन पर भरा जमान बातें कर रही थी। वो वाकई इसके जैसी थी, जब बदतमीज और अखलाक बद अखलाक भी थी तो बेहद, और अब खुश मिजाज और खुश अखलाक थी तो भी बेहद। वो इसके साथ बहुत दोस्ताना बेतकल्लुफाना अंदाज में बातें किया करती थी मगर इस बेतकल्लुफी के बावजूद वो इसके और वली के रिश्ते के मुतल्लिक या इसकी मम्मी के मुतल्लिक कभी भी कुछ ना कहती थी, ना ही इसकी पिछली किसी बात का कोई हवाला देती थी। वो जैसे पिछली हर बात भुलाकर इसके लिए दिल बिल्कुल साफ और कुशादा कर चुकी थी। लंच टाइम में अभी काफी देर थी मगर जरमीना को भूख लग रही थी। इसकी भूख इलाज के लिए फारा एक बड़ा सा प्याला गरम गरम पॉपकॉर्न बनाकर ले आई थी। दोनों बच्चे वही बैठे टीवी पर कार्टून देखने में मसरूफ थे। उष्णा पॉपकॉर्न देखते ही दोनों के पास आ गई और दोनों से भी पहले खाना शुरू हो गई, जबकि हुजैफा वैसे ही काई और मैक्स को बेबलेट चलाता देखने में मगन रहा। जरमीना हुजैफा को प्यार से चमकार चमकार कर अपने पास बुला रही थी, बेटा खाकर तो देखो कितने मजे के पॉपकॉर्न बनाकर लाई हैं फारा आंटी। फिर वो उठकर इसके पास गई और जबरदस्ती इसके मुंह में दो तीन पॉपकॉर्न से मजीद खाने से इंकार में सर हिलाते इसने अपनी नजरें फिर कार्टून पर जमा दी। इसे इग्नोर करो, अभी खुद आ जाएगा खाने, फारा ने डाइट पेप्सी का कैन खोलते इसे नसीहत की। नहीं आएगा खाने से तो जैसे इसे एलर्जी है, वो मायूसी से बोली। तुम थोड़े दिन के लिए अपने इस नखरेले बेटे को मेरे पास छोड़ो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। इसने उष्णा को गोद में चढ़ा लिया। वो इसकी गोद में बैठी मजे से पॉपकॉर्न भी खा रही थी और इसके कैन से पेप्सी के घूंट भी लेती जा रही थी। हमें तो ये मोटी गुड़िया प्यारी लगती है, इसने उष्णा के दोनों गालों पर प्यार किया। तुम मेरे बच्चों में फर्क कर रही हो, खबरदार, देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपने बेटे में मेरी जान है, अगर मुझसे बनाकर रखनी है तो इसके नखरों समेत दिल खोल कर प्यार करना होगा। मुझे पहले ही शक था, तुमने कंफर्म भी कर दिया, हो ना वही रवायती अम्मा बेटे को बेटी पर फोकियत देने वाली। हाँ तो कुछ गलत है क्या, ये तो शादी करके चलती बनेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो ये बेटा ही बनेगा। रवायती का लफ्ज सुनकर इसने भी बिल्कुल रवायती और गिस्सा पिटा जुमला बड़े फखर से बोला, फिर इसे गुर्ता पाकर कहका लगाकर हंस पड़ी। यार तुम्हें ट्विन बच्चों के साथ मुश्किल नहीं हुई थी, अब तो खैर ये कुछ बड़े हो गए हैं मगर जब पैदा हुए होंगे तुम दो दो को साथ कैसे संभाल लेती थी? तुम ये बात कर रही हो, मुझे तो प्रेगनेंसी के दिनों में डॉक्टर ने अव्वल अव्वल जब ये बताया था कि मेरे यहाँ जुड़वां बच्चे होंगे तो मेरे तो खुशी से पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने इतने अरमानों से ट्विन बच्चों की डबल सवारी वाली प्रॉम कार्ड सब चीजें खरीदी थी, फिर जब ये पैदा हुए इतफाक से इस हॉस्पिटल में इन दिनों किसी और के हाथ जोड़ा बच्चे पैदा नहीं हुए थे। मैं इतने फखर से इन दोनों को गोद में लेकर फिरती थी, बस सिर्फ ये कहने की देर होती थी तुम्हारे पास तो बहन एक एक है, मेरे पास तो दो दो हैं। यार मुझे मुनफरद नजर आने का शौक है, रवायती और आम से काम तो मैं कर ही नहीं सकती, और फिर इसमें एक फायदा भी है, दोनों साथ मिलकर बड़े हो गए। शुरू में बेशक बहुत मुश्किल हुई मगर बच्चे दो ही अच्छे के सूर पर अगर चला जाए तो मेरा फायदा भी, तो देखो एक वक्त में दो मुश्किल से निकल आई, साथ बड़े हो गए, साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया, चलो अम्मा की मुश्किल खत्म हुई। वो इतने मजे से बोल रही थी कि फारा से अपना कहका रोकना मुश्किल हो गया। हाँ बस नुकसान इतना हुआ कि मेरा पढ़ाई का 1 साल ज़ाया हो गया। कॉलेज में क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया। इसी वजह से अब फाइनल ईयर चल रहा है, लेकिन खैर क्या फ़र्क पड़ता है, अभी ना सही अगले साल मुकम्मल डॉक्टर बन जाऊंगी। तुम्हारी पढ़ाई के दौरान शादी हुई क्यों थी जरमीना? वो अब ये बात पूरे यकीन के साथ जानती थी कि आगाजा ने इस शादी के लिए जरमीना को मजबूर नहीं किया होगा। पहले भी इस खानदान की औरतों को मजलूम, दबा हुआ और मर्दों को जालिम और हाकिम समझा करती थी। इस खानदान की औरतें बापर्दा रहा करती थी, तो ये कोई ऐसी बुराई तो नहीं जिस पर यहाँ के मर्दों को कदामत परस्त और जालमाना हाकमाना जहनीयत का मालिक करार दे दिया जाए। घर से बाहर तो जरमीना और इस फैमिली की दूसरी खवातीन बड़ी बड़ी चादरों में मलफूफ हो जाया करती थी, मगर घर के अंदर भी इसने जरमीना को कभी दादा या बाइता के सामने खुले सर से नहीं देखा था। वो घर में भी हर वक्त सूट के साथ का दुपट्टा सर पे लिया रखती थी, जबर या जबरदस्ती से नहीं अपनी खुशी से। इसने जमीना को फैशन के मुताबिक हाफ स्लीव्स या बेतहाशा फिगर को नुमाया करती फिटिंग वाले कपड़े पहनते नहीं देखा था। इसका लिबास फैशन के मुताबिक होता था, मगर वो फैशन बस इसी हद तक किया जाता था जहां तक हमारा मजहब हमें करने की इजाजत देता है। इस सब में कहाँ बुराई थी, कहाँ जुल्म था, कहाँ दकिया नूसियत थी, बगैर जाने मिले करीब से देखे और इस फैमिली के मुतल्लिक बिल्कुल इसी तर्ज के प्रोपेगंडे का शिकार थी जैसे मगरबी मीडिया मुसलमान मुल्कों की बापर्दा खवातीन के मुतल्लिक करता है, जो सर पर स्काफ पहन ले, खुद को डका छुपा कर बाहर निकले, वो बेचारी मर्दों के जुल्म का शिकार है। इस जुल्म से रिहाई के लिए इसे औरतों के हकूक के लंबरदार किसी तंजीम से फौरन राबता करना चाहिए। बस यार हालात कुछ ऐसे बने कि मेरी शादी जरा जल्दी और अफरा तफरी में हो गई। जरमीना इसके सवाल का जवाब दे रही थी। असल में मेरे ससुर इन दिनों बहुत बीमार थे। बीमार क्या, डॉक्टर्स इन्हें जवाब दे चुके थे, महीना दो महीना, बहुत से बहुत 6 महीने। डॉक्टर्स के मुताबिक बस इतना वक्त बाकी था इनके पास। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में अपनी किसी एक औलाद की खुशी तो देख ले। अब्बास सबसे बड़े हैं ना अपने बहन भाइयों में, तो शादी इन्हीं की होनी थी। लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद मेरी तालीम को अधूरा देखते इनकी आगा जान से ये बात कहने की हिम्मत ना पड़ती थी कि स्कूल के आखिरी सालों में मेरी मंगनी बात के साथ कर देने के बाद आगा जान ने, और तब तो मामा और पापा भी जिंदा थे, इन तीनों ने अबाद के मम्मी बाबा से बिल्कुल वाजह तौर पर कह दिया था कि शादी मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी और इससे कबल शादी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त किसी ने यह भी तो नहीं सोचा था कि अबाद के बाबा यूं एकदम इतने मौजी मर्ज का शिकार हो जाएंगे। तब फिर अबाद मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे इस शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं इनकी ख्वाहिश मानते अभी शादी के लिए राजी हो जाऊं तो वो अपने मरते हुए बाप को एक आखिरी खुशी दे पाएंगे। फैसला मुश्किल था, मैं बहुत पढ़ाकू किताबी कीड़ा टाइप लड़की थी, डॉक्टर बनना मेरा जुनून था और मेडिकल की पढ़ाई के साथ शादी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, शशोपंज उलझन में मुबतला मैंने आखिर आगा जान की एक बात पर अमल किया। वो कहते हैं फैसला करने के लम्हे में हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो। वो क्या कह रहा है, और मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि शादी तो तुम्हारी शख्स से होना तय है कि तुम इसे मंसूब हो, अब नहीं होती तो 4-5 साल बाद होगी, फिर एक छोटी सी कुर्बानी देकर इसका मान रख लो। और यकीन करो फारा, शादी इस वक्त कर लेने का मेरा वो एक छोटा सा फैसला मेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना अच्छा साबित हुआ तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। हालांकि इस वक्त मेरी अधूरी तालीम और कम उम्र की वजह से लाला को इस शादी पर बहुत तहफ्फुज़ात थे। मेरी शादी हो गई और शादी के 1 महीने बाद ही मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, तब खुद मुझे अपने फैसले के दुरुस्त होने का एहसास हुआ। मेरा वो एक छोटा सा फैसला एक मरते हुए शख्स को खुशी दे गया और बदले में उम्र भर के लिए मेरे शोहर की निगाहों में मेरी इज्जत और कदरों मंजिलत कई गुना बढ़ा गया। मेरी इस एक कुर्बानी की इनकी निगाहों में बेहद इज्जत है, बहुत कदर है। मेरे एग्जाम्स हो रहे हों तो अपने काम तो छोड़ वो मेरे काम तक खुद कर देते हैं। मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मेरी इस डिग्री में 50% क्रेडिट मेरे शोहर के तामुन, हौसला अफजाई, मदद और मोहब्बत का होगा। वो जमीना की बाकी बातें बेध्यानी में सुन रही थी। इसकी सोचे जमीना के सिर्फ एक जुमले पर अटक कर रह गई थी फैसला करने के लम्हे में। जरमीना तुमने क्या कहा था अभी, फैसला करने के लम्हे में दिल की आवाज़ सुनो। जरमीना जैसे ही खामोश हुई इसने बेहद हैरत से इसके ये अल्फाज खोए खोए से अंदाज में दोहराए। हाँ यार, ये आगा जान कहते हैं, ये आगा जान के फेवरेट और गालबन खुद ईजाद करदा जुमले हैं और ये वो हमें बचपन से सिखाते बताते और सुनाते आए हैं। फैसला करने की घड़ी और फैसला करने के लिए हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो। दिल दलीलें नहीं मांगता, इसलिए जुरतमंद भी होता है, जबकि दिमाग हर काम करने से पहले दलीलें, सबूत और गवाहियां तलाशता है, इसलिए बुजदिल होता है। लेकिन दिल की माने का ये मशवरा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इस मशीन को सही वर्किंग कंडीशन में रखा हुआ होता है। इस पर झूठ, नफरत, अदालत, लालच, हिरस, हसद, बगज और कीना का जंग नहीं लगने दिया। जरमीना हंसते हुए आगा जान के अल्फाज हू बहु उन्हीं के से अंदाज में दोहरा रही थी और वो हैरत से गुंग यक तक इसे देख रही थी। आगा जान की अपनी ही तर्ज के बड़े बड़े मजे की मसाले और बातें हवा करती थी और जो वो हमें बचपन में सिखाया करते थे। ये जो जमीर अंकल है ना, वो भी वही दिल के कहीं आस पास ही रहते हैं। इनका काम हमारी इस मशीन की निगरानी और हिफाजत करना है। टोकते रहते हैं, अगर हम इनकी चीखों पुकार पर ध्यान देते, जंग की बर वक्त रोकथाम कर लें, तब तो खैर है। समझ लो हमने अपनी मशीन को खराबी से बचा लिया, नहीं तो फिर वो जंग आहिस्ता आहिस्ता हमारी कीमती और नाजुक मशीन को पूरी तरह अपनी लपेट में लेकर इसे नकारा बना देता है। जरमीना आगाजान की बातें इन्हीं के अल्फाज और लहजे में मुस्कुराते हुए दोहरा रही थी और वो हैरान हो रही थी। तो डैडी ने जो बचपन में एक बार इसे यही सब बातें इन्हीं अल्फाज में नसीहत की थी, वो इन्हें आगाजान ने सिखाई और बताई थी। और आगाजान की बजाहर ये छोटी छोटी सी बातें थी, कितनी सच। कुछ देर बाद जब जरमीना आबाद का फोन आने पर वहां से उठी और वो लाउंज में अकेली रह गई, तब वो आगा जान के इन बातों की रोशनी में अपना तज्जिया करने लगी। इसे क्या बात डिस्टर्ब करती थी? जब खुला का इशू उठा, तब जब आगा जान से जायदाद में हिस्सा मांगने के मम्मी के मुतालबे पर वो मसलहतन खामोश हुई थी, तब जब अपने घर में इसने आगा जान से इस रिश्ते के लिए इनकार किया, तब जब इसने 2 महीने पहले आगा जान के फोन कॉल नहीं सुनी थी, तब इसकी हाउस जॉब में कारकर्दगी खराब क्यों जा रही थी? इसका फाइनल ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका दिल इसके खिलाफ चला रहा था। जो कुछ भी वो कर रही थी, इस पर इसका दिल इससे नाखुश था। फारा, तुम मुझ पर जंग लगा रही हो। तुम मेरी दुरुस्त वर्किंग कंडीशन को खराब कर देने पर तुली हो। तुम मुझे नकारा बना देने के काम कर रही हो। और इसका दिल इसे पहली बार बदगुमान और शाकी कब हुआ था? जब आगा जान इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा के गए थे। दिल की दुनिया अपनी दलीलें और अपनी मंतकें होती हैं। दिल जिसे अच्छा करार दे दे, फिर वो बेदलील भी अच्छा होता है, और जिसे बुरा कहे, फिर वो अपने हक में हर दलील और हर हुज्जत रखने के बावजूद बुरा ही रहता है। और इसके दिल ने इस रोज आगा जान को अच्छा मान लिया था, इनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। इससे पहले इसका दिल ना इन्हें अच्छा समझता था ना बुरा, मगर उस रोज इनके साथ बेंच पर बैठकर फॉर्म भरते इसके दिल ने इनकी सच्चाई, इनके खुलूस और इनकी मोहब्बत को पहचान लिया था। आज इसे पहली बार पता चल रहा था कि 6 सालों से वो अलग सिमत में भाग रही है और इसका दिल अलग सिमत में। इसका दिल इसके मद मुकाबल इसके खिलाफ खड़ा था। ये तो अब तलाक, खुला जायदाद वाले इश्यूज और अकाउंट से सारा पैसा मतवातर खर्च कर डालने वाले मामले के बाद हुआ था, जो वो मम्मी से खफा और बहुत दूर हो गई थी। वरना इससे पहले तक तो इन तमाम बरसों में इसने हमेशा इन्हें इनके हर अमल के लिए हक बजानब समझा था। सिर्फ इसने इसके दिल ने नहीं, दिल में माँ की मोहब्बत ना हो ये हो सकता था भला, मगर इसका दिल जिसे इतना चाहता था, इसे बर्बाद होता और गलत करता भी तो नहीं देख सकता था। वो जिसे मोहब्बत करता है, इसे तबाही और बर्बादी से बचा लेना चाहता था। और इसकी मम्मी, वो खुद को तबाह ही तो कर रही थी। एक बहुत अच्छी घरेलू मशर की वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी ने शोहर की जिंदगी के आखिरी अयाम में इसका साथ नहीं निभाया, मरने से पहले से तनहा छोड़ गई। अपने अंदर उभरते एहसास निदामत, शर्मिंदगी और पछतावों से बचने की राह उन्होंने ये निकाली कि सब इल्जाम आगा जान पर धर दें और खुद को जिंदगी के दूसरे मशागल में इतना उलझा लें कि अपने अंदर से उभरती कोई पछतावों भरी याद इन्हें आए ही नहीं। कभी जो एक बहुत घरेलू औरत, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी माँ थी, और अब अमीर तबके की महज एक ऐसी औरत थी जिसका काम पैसा दोनों हाथों से लुटाना था। शॉपिंग्स, डिनर्स, पार्टीज, इसकी जिंदगी का महवर यही चीजें बन गई थी। इसका दिल इसे समझाता था, डांटता था कि वो माँ को इस खुदकुशी से रोके, इसे गलत करने से रोके, इसे समझाए कि वो जिंदगी की तलख सच्चाइयों का बहादुरी से सामना करे। वो माँ का साथ एक अच्छी फरमा बरदार बेटी की तरह तो दे रही थी, मगर अंदर यह एहसास शिद्दत से मौजूद था कि वो जो कुछ कर रही है वो सब गलत है। पिछले 6-7 महीनों से वो कितनी उलझी हुई और बेकरार थी, वो कितनी निढाल और कितनी बेसकून थी। वो अपने ही दिल के खिलाफ लड़ते लड़ते थक चुकी थी। इसे आगा जान के पास पेशावर चले जाना चाहिए, ये इसके दिल ने इससे कहा था। और इसने जिंदगी में पहली बार अपने दिल की बात मानी थी। इतने दिनों में पहली बार इसे खुद पर थोड़ा सा फख्र हुआ। इसका निदामत से झुका सर कुछ ऊपर उठ सका। वो अपने दिल की मान कर यहाँ आई थी, वली के पेश करदा किसी माहदे को मान कर नहीं। इसका दिल अभी सही वर्किंग कंडीशन में था। हर चंद इसने इसे दागदार बहुत करना चाहा, मगर वो अभी तक सही सलामत था। जरमीना की बजाहर एक आम सी बात ने इसके लिए सोच के कितने नए दरवाजे वा किए थे। माँ से मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो इसे इसकी गलतियों का बहुत प्यार से एहसास दिलाए। इसकी गलतियों के लिए जवाब ढूंढना छोड़कर इसे नाराज होकर तर्क करके वो इससे वो बात कहे जो इसका दिल समझाता आया है कि इसे अपनी माँ से कहनी चाहिए। शाम के वक्त अपने पोर्शन में आकर इसने वहां इन्हें फोन किया था। कांपती नहीं मजबूत उंगलियों से इसने मम्मी का नंबर मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैंने तुमसे कहा था अब मुझे कभी भी, वो अपना जुमला मुकम्मल करते ही यकीनन लाइन मुनकता कर देने वाली थी, इसलिए वो बेसाख्ता इनकी बात के दरमियान ही बोल पड़ी। मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है, आप मेरी पूरी बात होने से पहले फोन बंद नहीं करेंगी। अगर आपने जिंदगी में कभी डैडी से मोहब्बत की थी तो मैं आपको उस मोहब्बत का वास्ता दे रही हूँ। फारा, इसके लहजे में कोई गुस्ताखी कोई बदतमीजी नहीं थी, मगर शायद इन्हें ऐसा ही लगा था, तभी तंबीही अंदाज में इसका नाम लिया। मम्मी, एक शख्स था मोहम्मद बहरोज खान, वो बहुत अच्छा शोहर था, बहुत अच्छा बाप था। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के 23 सालों में अपनी बीवी के साथ बहुत मुखलिस बहुत वफादार रहा। इसने बीवी को मोहब्बत इज्जत वफा सुख चैन वो सब कुछ दिया जो एक चाहने वाला शोहर दिया करता है। इसकी एक बेटी भी थी और वो इस बेटी को इसकी जिंदगी के 18 सालों तक बेहदों बेहिसाब प्यार देता रहा। इसे ऐशो आराम मोहब्बत शफकत वो सब कुछ दिया जो एक मोहब्बत करने वाला बाप अपनी औलाद को देता है। फिर आपको पता है क्या हुआ, इसका भाई मर गया, इसका बाप बिस्तर पर बीमार गम से निडाल पड़ा था। वो इतने बरसों जिद बांध कर नाराज होकर बाप और भाइयों से क्यों दूर रहा, इनसे कभी मिला क्यों नहीं, बेटे और भाई का फर्ज कभी निभाया क्यों नहीं। वो गम में भी था, वो जिंदगी भर बाप और भाई से दूर रहने पर नादम भी था। और पता है इन हालात में 23 साल साथ रहने वाली बीवी और 18 साल बाप की शफकतों के साए में पली बेटी ने क्या किया। और पता है इन हालात में 23 साल के मोहब्बत भरे सास से बदगुमान होने में 23 घंटे भी ना लगाए और बेटी ने 18 साल की मोहब्बत महज 18 घंटों में भुला डाली। आपका मालूम है जब वो शख्स 3 रोज बाद मर गया था तो किस हाल में मरा था। इसकी बीवी ने इसे 3 रोज से बात करना बंद कर रखी थी और बेटी खुद को बहुत मजलूम और बहुत सितम रसीदा समझकर एक कोने में बाप से ला ताल्लुक बैठी थी। इसकी बीवी और बेटी इस पर एतबार करती हैं, इसका यकीन करती हैं, इसकी मोहब्बत को दिल की गहराइयों से मानती हैं। वो सुनना चाहता था, वो देखना चाहता था, इसलिए कि इसकी सांसें उखड़ने लगी थी, इससे शायद प्यास भी लग रही थी। वो शायद जानकनी की तकलीफ में बिस्तर पर निडाल होकर गिर भी गया था। इसके हलक में पानी का एक कतरा टपकाने वाला कोई इसके पास ना था, ना बीवी ना बेटी। इसने सुबह से कुछ ना खाया था, भूखा प्यासा था। वो भूखा प्यासा शायद प्यास की शिद्दत से तड़पता नजा का आलम जानकनी की तकलीफ सब कुछ तन्हा झेलकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो भराई हुई आवाज में इन्हें एक कहानी सुना रही थी।